ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है, तुम बच्चे भ्रामरी समान हो। जैसे भ्रामरी भूं भूं करके कीड़ों को आप समान बनाती हैं, वैसे आपको भी वैसा ही औरों को आप समान बाबा के नजदीक लाना है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि तुम बच्चे डबल अहिंसक हो, और डबल अहिंसक के कर्तव्य या लक्षण क्या होंगे, वे खुद भी खुश रहेंगे और खुशी बांटते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा भक्ति में देखो, मनुष्य लक्ष्मी के पास जाते हैं, धन मांगते हैं, और तुम बच्चों को इतना धन मिल जाता है कि नई दुनिया के अंदर हर चीज उपलब्ध है। यहाँ पर देखो आज अनाज नहीं है, आज ही चीज नहीं है, कितनी कमी होती है, लेकिन तुम बच्चे नई दुनिया में भरपूर हो जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो, अम्बा के पास जाते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और तुम बच्चों की सर्व मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं? बाबा ने कहा श्री मत पर चलने से तुम बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 17 दिसंबर 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना। एक है खुशी में रहना, दूसरा बहुत, तीसरा है बहुत बहुत। मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, पहला है ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो। वाचा से भी ऐसा कुछ ना निकले, कभी दुख तो क्या, कुछ ना कुछ बोलते रहते, ये है वो है। बाबा कहते जिससे किसी को दुख ना हो, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। वाचा से भी दुख देना हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। बाबा कहते थे इस समय तुम ब्राह्मण हो तो ऐसा भी ना हो, भविष्य में तो सब मिलेगा ही, लेकिन इस समय खान पान ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा हो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, और ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते। कौन सी बात? बाबा हमेशा कहती है कि जब भी बाबा आते हैं पहले से बच्चों को आत्मचिंतन आत्मिक स्वरूप होके बैठना है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। स्कूल में टीचर आएगा, बच्चे इधर उधर देखते हैं तो टीचर क्या कहते हैं, अटेंशन प्लीज। नहीं सुनते, टेबल पे ठक ठक करता, अटेंशन प्लीज। तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सा अटेंशन, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन किस बात का देना है, दो बाप की तरफ। हमारा बाबा क्या कहते हैं, अटेंशन दो, दो बाप की तरफ। एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाबा कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए, जैसे बाबा प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, ऐसे तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कौन सी बात, बहुत प्यारा बनना है और मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में खुश रहना है। कोई तुमको दुख नहीं देना है, बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको कोई भी प्रकार का किसी को दुख नहीं देना, न मनसा न वाचा न कर्मणा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। कभी कभी दूसरे को नहीं देते हैं लेकिन खुद ही मन में सोचते रहते ये वो, तो उससे क्या होता है, खुद को दुख होता है। तो बाबा कहते दूसरों को भी मनसा दुख नहीं देना है, खुद को भी दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूले होती है। बाबा बच्चों को हल्का करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान देना है, कुछ ना कुछ तो भूल हो जाती है लेकिन फिर भी अटेंशन देना है। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से भूले होती हैं। अपने को आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे तो फिर कुछ किसी को भी दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। शरीर को देखते हैं तो बाबा कहते दुख देते हैं, शरीर ही नहीं देखेंगे आत्मा को देखेंगे तो फिर दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है, ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पहले डबल आंसर, अभी क्या बन रहे हैं, पारस बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे, ये है दुख धाम। ये तो बहुत सिंपल है। कौन सी बात, कि हम सुख धाम के मालिक थे, अब ये दुख धाम है। बाबा कहते कितनी सिंपल बात है, ये बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पाठ बजाने आए हैं, पहले सुख का पाठ बजाते हैं, फिर बाबा कहते दुख का पाठ भी बहुत समय बजाया है, अभी सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना। बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि आत्मा रूप में देखो, एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख दे नहीं सकती। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करे। ब्रह्मा बाबा भी ये करते थे, शिव बाबा भी बच्चों से कैसे बात करते थे, जैसे आत्मा से बात करते थे। तो बाबा भी क्या बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं, हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते। दादा चंद्रास बाबा के सेवा पर थे और लच्छू दादी बाबा को भोजन कराती थी, तो बाबा पक्का कराते थे लच्छू दादी को, कहते थे बताओ किसको खाना खिला रही हो, किसके लिए भोजन लाई हो, तो वो बाबा को बता, बाबा शिव बाबा के लाए लियो, शिव बाबा के रथ के लिए लाई हूँ। तो बाबा ये भी पक्का कराते थे, कहीं ऐसा इधर उधर डाइवर्शन ना हो, पक्का रहे कि ये शिव बाबा का रथ है जिसको मैं भोजन करा रही हूँ। शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं तो शिव बाबा ही याद रहता है। जब ये ध्यान रहेगा कि हम शिव बाबा के रथ को खिला रहे हैं तो शिव बाबा ही याद रहता है, वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं पांच तत्वों का भी कल्याण करता हूँ, आत्माओं का भी करते हैं और पूरी सृष्टि का, तो पांच तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज तकलीफ नहीं देती है, यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या क्या होता है, कभी क्या हो रहा है, देखो चारों तरफ कैसा मौसम बदलता है। बाबा के घर में बाबा ने बच्चों को कितना सुख दे दिया, बाबा के टाइम पर तो कोई भी साधन नहीं था, और हिस्ट्री हॉल में केवल एक छोटी पतली सी दरी होती थी, गर्म करने के साधन भी ये वही करते थे, लकड़ी का या फिर कोयले की अगीठी होती थी। अभी तो बाबा ने बच्चों को हर प्रकार से साधन दे दिए हैं। तो बाबा कहते देखो कभी क्या क्या होता है, वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है, दुख का नाम ही नहीं, क्यों, क्योंकि है ही हेमन। बाप आए हम तुमको हेमन का मालिक बनाने, ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप भी है और ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंची बनाएंगे ना, बाप भी ऊंच टीचर भी ऊंच, तो जैसा टीचर होता वैसा बनाता है। तो बाबा कहते जरूर ऊंचते ऊंची बनाएंगे ना, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए, तुम कितने ऊंचते कितने महान थे, देवताएं थे। तो बाबा कहते ये सब बातें भूल गए हो, ये बाप भी बैठ समझाते हैं। ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो कहते थे नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ज्ञान नहीं था, तो फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चला आया। लोग कहते ना ये ज्ञान परंपरा चला है, तो बाबा समझाने की युक्ति बता रहे कि ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, जब उनके पास नहीं था तो फिर ये परंपरा कैसे चला आया। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति, परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में, कहेंगे कलयुग है बहुत दुख है हालत खराब है, लेकिन हम भी दुर्गति में बैठे हैं। बाबा कहते ये नहीं समझते, ये भी किसको पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खेवैया, विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं बाबा को क्या कहते हैं, एक तो लिबरेटर गाइड खेवैया उसको कहते हैं खीर सागर, विष्णु को भी खीर सागर में दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन, बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के थोड़ा दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के अंदर बहुत बड़ा विष्णु लेटा हुआ दिखाई देते हैं, और वहाँ जाते हैं तो दूध पानी डालते हैं। पहले जमाने में भक्ति करते थे अच्छा दूध डालते थे, और आजकल तो आप समझ सकते हैं कितना पानी और कितना दूध डालते होंगे, तो बाबा तो बता रहे, क्योंकि बाबा का तो सब देखा हुआ है ना, तो बाबा कहते हैं बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई है और अनेक बार जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जगत जीत बनने वाले हो तो बाबा कहते फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। बल ग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे, फिर चौथी बात, कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है ना, ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, ये है कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसी हालत हो जाती, बुद्धि इतनी खराब, समझ ही नहीं आता है क्या कर देते, मार देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो, तुमको अभी सतगुरु मिला। जब वानप्रस्थी बनते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उसकी शरण लेते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम वानप्रस्थी हो, तुमको सतगुरु मिला है। वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे, ये है यूनिवर्सिटी। भगवानों वाच्य है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजे थे वही पुल पुजारी राजा बनते, पहले पूज्य थे फिर जाकर के पुजारी बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो श्रीनाथ द्वारे जाओ। बाबा कहते खाओ पियो कहीं भी जाओ, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा और दैवी गुण धारण करने हैं, वहां भी जाकर के सब कुछ घूमो फिरो, फिर पर चिंतन नहीं करते रहो। हम वहां गए, अभी जाते ना, वहां गए, वहां रहने का जगह अच्छा नहीं था, वहां ये नहीं था, खाना अच्छा नहीं था, अरे इतनी खातरी करते हैं बाबा के बच्चे, तो ये भी खुश होना चाहिए। हम बाबा के घर में जाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते भल खाओ पियो श्रीनाथ द्वारे जाओ, वहां तो घी के माल ढेर मिलते, ऐसा नहीं है बाबा ये बता रहे घूमने वल जाओ, वहां नहीं कि वहां जाओ बोलो घी के माल मिल रहे लेके खा लो, लेकिन बाबा कहते हैं सेंटर पर तो सब मिलता है, परंतु बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि वहां श्रीनाथ द्वारे में ये सब होता है। ये किसका कारण है, सत्यु में सब कुछ मिलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है, पुजारी खाते हैं, भगत आते हैं उनको मिलते हैं, पुजारी खाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां कौन खाते हैं, पुजारी खाते हैं। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है, जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहां चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से चार भाग में ऑटोमेटिकली हो जाते, वहां चावल इतना बनाते हैं और सब जाते हैं उसको प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो बाबा करते हैं कि फिर चावल को ही, चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना, एक तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार, दोनों का कंपैरिजन। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता है, सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा तो बहुत बहुत मीठा है, वह तो है निराकार, प्यार आत्मा को किया जाता है, आत्मा है शरीर में तब तो प्यार करते ना, आत्मा नहीं है तो शरीर को कोई प्यार नहीं करता, उसी समय शरीर को निकाल देते हैं। तो बाबा कहते प्यार आत्मा को किया जाता है, आत्मा को ही बुलाया जाता है, शरीर तो जल गया पहले द्वापर में करते थे ना, भक्ति में करते थे, चला भी जाए तो उसकी आत्मा को बुलाते थे। अभी तो वो इतना है नहीं, तो बाबा कहते शरीर तो जल गया, आत्मा को ही बुलाया जाता है, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है कि आत्मा को अंधियारा होता है, ज्योति जगाना मीन्स आत्मा को रोशनी चाहिए, तो आत्मा को अंधियारा है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहां ये बातें होती नहीं है। सचियों के अंदर कोई भी शरीर छोड़ता है पूरी आयु को लेकर के जाता है, फिर वहां तो खुशियां मनाते हैं, उनको पता है जाकर के दूसरा शरीर लेगा। तो बाबा कहते सतयुग में ये सब भक्ति की बातें होती नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ज्ञान कैसा है। बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत मीठा है ना, अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। आप दोनों बातें, कभी कोई सुस्ती करता है ना तो उसको बोलते कान खोलकर सुनो, और बाबा ने क्यों कहा आंखें खोलकर सुनना है, मिस बैठे बैठे ज्ञान की मीठी मीठी बातों में फिर निंद्रा की ओर चले जाते हैं। तो बाबा को कहना पड़ता है कि आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, बाबा मुरली चला रहे और आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर बाबा को कैसे देखेंगे? बाबा के तन में शिव बाबा विराजमान है, उनको देखेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए। कभी भी कोई आंखें बंद करे तो क्या करोगे, हैं? पास वाले को जागृत कर देना है ना, ठीक है ना। कोई भी आंखें बंद करता लेकिन उसको फीलिंग नहीं आए कि मेरे को क्यों इसने उठा दिया, लेकिन उठाना नहीं है, उसको पक्का हो जाएगा कि बाबा ये मुरली चल रही है तो हमें भी ध्यान से सुनना है। तो बाबा कहते शिव बाबा यहाँ विराजमान है तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ध्यान में चली जाती, शुरू शुरू में जब बाबा दृष्टि देते थे, बाबा से दृष्टि लेते लेते वो ध्यान में चली जाती थी और अव्यक्ति रास करने लग जाती थी। फिर ऐसा बाबा ने फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद जब दादियां भी बैठती थी दृष्टि देती थी, सबके सब ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा कहते वो एक उस समय ये तपस्या का ही था पार्ट, और तपस्या करनी थी और बाबा को अनुभव कराने थे तो ये पार्ट था, अभी ये पार्ट नहीं, अभी तो केवल ज्ञान का पार्ट है ना। तो बाबा कहते हैं आंखें देखने से ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी, इतना ध्यान में जाती थी पूरा व्यक्ति रास करते कहाँ 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 दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना, बाप समझाते हैं एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं। भाई को समझाते हैं तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, बाबा के तुमको बताओ बेहद का बाबा समझाते हैं, क्या तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे? ये तुम अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते। नवरात्रि के टाइम पर क्या होता है, छोटी छोटी कुमारियां जो पवित्र हैं उनको सबको बुलाते हैं, बैठ करके माथा टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। जहां तक कुमारी नहीं मिलती है तो आसपास स्थानों से आसपास जगह से ढूंढ करके कुमारियों को लाते हैं, जब उसकी शादी होती है फिर वो जाके सबके आगे माथा टेकती है। तो बाबा कहते हैं कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती हैं तो पुजारी बन पड़ती हैं, सबको माथा टेकना पड़ता है। पहले उसको माथा टेकते थे और शादी के बाद वो सबको माथा टेकती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब खीर खंड रहते, खीर खंड समझे ना, कल भी बताया था। खीर मीन्स दूध, खीर को दूध कहते हैं, क्षीर कहते हैं, क्षीर संस्कृत में क्षीर कहेंगे, वैसे खीर कहते हैं। खीर मीन्स दूध, खंड मीन्स चीनी। तो दोनों बहुत मिल करके बहुत प्यार से रहते हैं। तो वहाँ है ही रामराज, सब खीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य है। फिर तो फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि में कितना प्रेम से बैठ सुनाते, रामायण आदि जब सुनाते हैं, सुनने वाले इतने प्यार से सुनते हैं और सुनाने वाला भी बहुत प्यार से सुनता है। ये सब है भक्ति मार्ग। तो बच्चियों को साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ते हैं। बच्चियां जब शुरू में साक्षात्कार करती थी ना, तो वो साक्षात्कार में डांस करने लग जाती थी। बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का तो गायन है ना, हिलेगी परंतु डूबेगी नहीं। सच के लिए कहते ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। वहां कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बाबा किसी को सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं, और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं। यहाँ तो देखो कितना रोकते हैं। अब देखो अंतर, और कोई सत्संग होंगे वहां उनके लोग, घर के लोग कभी मना नहीं करते, और यहाँ अगर किसी को आना होगा तो परिवार वाले मना करते हैं। आजकल तो कम है, पहले शुरू में तो बहुत मना करते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। बीके बनते हैं ना, जो जरूर ब्राह्मण भी तो चाहिए ना, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बाबा के बच्चे हैं, बाबा स्वर्ग की स्थापना करता है, तो बाबा के बच्चे क्या होने चाहिए? जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा कहते अपने से बातें करो, हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है, आगे हम ही पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी रहे, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। 21 जन्म पूजनीय, 63 जन्म पुजारी, फिर जाकर के पूजनीय स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानों वाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बना दू। बाबा क्या बनाते हैं? राजाओं का राजा बना दो। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। जब द्वापर युग से शुरू होता है तो राजे महाराजे अपने महलों में पूजा के लिए मंदिर जरूर बनाते थे, वहां पर करते थे। बड़े बड़े मंदिर और बनेंगे, लेकिन महल में जरूर होता था। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। उस समय कोई भी राजाएं होते थे, या तो लक्ष्मी नारायण का बनाएंगे या राधे कृष्ण का या राम सीता का। फिर बाद में जब भक्ति थोड़ा तमो प्रधान होने लगती है, फिर क्या करते हैं? फिर आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर पट पे गिरे, पट समझते ना, जमीन पे, उसको कहते पट, पट पे गिरे मीन्स एकदम नीचे आकर के रसातल पर गिर गए हो। अब बाबा कहते हैं, अब बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच है, हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं, हम हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ते हैं आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, हर 5,000 वर्ष के बाद हम पढ़ते हैं, बाबा आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कहती हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। कितना चढ़ाते हैं, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके, है ना गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है ना गीत, उसमें कोई भी छीन नहीं सकता है। तो बाबा ऐसा राज्य देते हैं जो कोई भी छीन ना सके। अभी तो कितने पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर भी झगड़ा चलता रहता, वो कहेगा पानी तब दूंगा ये हो, कंडीशन रखते रहे, जमीन के ऊपर तो चलता है, पानी को भी कितना झगड़ा चलता रहता है। तो बाबा कहते अभी तो पानी और जमीन के ऊपर कितना झगड़ा चलता रहता है, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, ना करे तो छोकरे लोग, छोकरे समझते जो जवान होते ना, जवान उसको छोकरा कहते हैं, छोकरे जो होते हैं ना थोड़े बीच के यंग, बहुत बड़े भी नहीं और थोड़े यूथ को कहते छोकरे। तो बाबा कहते बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते, ये सारा काम कौन करता, यूथ करता, अच्छा काम करे तो इतना अच्छा कर देगा और ऐसा काम करे तो वो भी पूरा ही विनाश कर देगा। इसलिए अभी जो यूथ ग्रुप है कितना क्रिएटिव काम करता है और वो सारे क्रिएटिव काम करके राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाए ना। तो बाबा कहते दुनिया के यूथ क्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं ना करे तो छोकरे लोग अथवा बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते हैं। वो लोग समझते हैं ये नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करें, वो समझते हैं युवा जो है भविष्य भारत के मालिक होंगे, लेकिन अभी के युवा क्या है तो क्या कर सकेंगे। सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं, दुनिया की हालत तो देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय, हालत क्या हो गई है, ये है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो, देवताओं और असुरों की लड़ाई फिर कैसे होगी कि देवताओं और असुरों ने लड़ाई किया। बाबा कहते कहाँ देवताएं रहते हैं और कहाँ असुर रहते हैं, ये लड़ाई कैसे होगी। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वह है ही डबल अहिंसक, तुम डबल अहिंसक बनते हो और फिर वहां पर है ही डबल अहिंसक, देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता, अहिंसा परमो, अहिंसा जो है ये परम देवता धर्म है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता। बाबा ने समझाया है अब अहिंसा में क्या करना है, किसी को भी वाचा से दुख नहीं देना है, वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, बोलने में भी कोई बात कहते ना बहुत ऊंची बात करते हैं, बाबा की उसी बात को धीरे से भी बोल सकते हैं, इतना ऊंचा बोलेंगे कि क्या कह रहे वो भी नहीं समझ आता, धीरे से बोलते तो समझ आते हैं, तो बाबा कहते वाचा भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का। बाबा का पता है ना, बाबा बच्चों को बहुत अच्छा भोजन भी कराते थे, बीच बीच में हल्का भोजन भी कराते थे। बाबा कहते थे बैलेंस रखना है, तो इसलिए बाबा कहते खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस होना चाहिए। राजाओं का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। प्रजा भी राजा को प्यार करती है, राजा भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब देखते हैं राजाएं, आज के कलयुगी राजाएं भी जब प्रजा से मिलते हैं तो कितना प्यार से मिलते हैं। तो बाबा कहते उनका बोलना भी बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति स्थापन करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए, भल सभी ब्रदर्स हैं, परंतु ये तो खेल, ये खेल ऐसा है आपस में लड़ते झगड़ते हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं कर। बाबा कहते सब कुछ देखते हुए भी निडर और बिना फिक्र के रहो, तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा बगैर पैसे जितना चाहो उतना मिलता रहे, पैसे की बात ही नहीं, हर एक के पास अपना ही इतना अनाज होगा, वो क्या करेंगे, इतना ही है, देख दूसरे को देते रहेंगे फ्री में, तो इतना जो चाहो मिलता रहेगा। अभी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कोई भी रोग भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग हो ही नहीं, गारंटी है। करेक्टर्स भी हम इन देवताओं जैसा बनाते, कितना क्या बनाते, हेल्थ वेल्थ और हैप्पी दे देते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो, युक्ति से समझाना चाहिए। अभी आजकल हर मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को वैसा समझाते हैं, और रूरल डेवलपमेंट वाला होगा उसको तो फिर कैसे योगिक खेती के बारे में बताते हैं। तो बाबा कहते जैसा जैसा मिनिस्टर हो उसको वैसा युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु शुरू में बाबा के टाइम पर ओपिनियन लिखवाते थे, अभी भी लिखवाते हैं। बाबा कहते ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु उनको को तुम भी तो समझो ना, क्योंकि हमको फुर्सत नहीं है, सबको समझना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाबा कहते उनको बताओ तुम्हारी आवाज से गरीबों को भी आएंगे सुनेंगे, तुम बड़े लोग जब आवाज करेंगे तो गरीबों का भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, क्या खड़ा है, काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा, कहेंगे कल कर लेंगे बाद में आएंगे, तो बाबा कहते उनको ये पक्का करो आज कल कल करते हुए काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो, ऐसा नहीं करो कुंभकर्ण जैसा बन जाओ। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है, बाबा को बच्चों से बात करने में, बच्चों को समझाने में बाबा को बहुत प्यार अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है, बाबा ने ये चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी ये ज्ञान था, आज शिव बाबा बता रहे, देखो ये ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा क्या कह रहे, ये दादा को थोड़ी ज्ञान था, शिव बाबा भी बाबा को दादा कह रहे है ना, तो शिव दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता। अब शिव बाबा कह सकते अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता, हम क्या कहेंगे, हमको तो दोनों से मिलता है, अलौकिक से भी मिलता है। ब्रह्मा बाबा ने जो दिया वो कम नहीं है, कितनी खातरी की, कितना प्यार किया, कितनी वरदान दी, वो भी कम नहीं है। बाबा फिर भी बुद्धि योग हमारा शिव बाबा की तरफ लगाते, इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है, ये तो दलाल है ना, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता। एक तरफ शिव बाबा कह रहे हैं कि इनको याद नहीं करना, फिर ब्रह्मा बाबा भी पक्का कर रहे हैं मेरे से तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। देखो दोनों साथ साथ बात कर रहे हैं, शिव बाबा ने कहा इनको याद नहीं करो, फिर ब्रह्मा बाबा उस पर स्टैंप लगा रहे मेरे से तुमको कुछ नहीं मिलना, लेकिन बहुत कुछ मिलता है, उनकी राजधानी में जाते हैं सब कुछ मिलता है, लेकिन बाबा खुद भी शिव बाबा को याद करते हैं और हमको भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा है बेहद के बाप का, प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे, हम उनकी राजधानी में तो जाएंगे ना। बाप कहते माम एकम याद करो, ये तो रथ है ना, रथ को याद नहीं करना, रथ को देख सकते हैं, याद किसको करना है, रथी को करना है, रथ को याद नहीं करना है। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है भ्रमणिया भी तुम हो। तो बाबा एक तरफ डिटैच करते हैं, फिर बाबा कहते हैं भ्रमणिया भी तुम हो, ज्ञान की भू भू करो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, इतनी बादशाही देते हैं, दुनिया में भी किसी से थोड़ा मिलता है तो उसको याद करते, उसको थैंक्स देते, बाबा विश्व का मालिक बनाते, बाबा कहते इससे बाप को क्यों नहीं याद करते, बाबा को तो हर रोज हमें क्या करना है, धन्यवाद भी करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसको भी विश्व का मालिक बना सकते हो, बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए, बाबा आया है जितना लेना लो, तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती है। बाबा कहते कोई भी कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उनको बताओ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती है, अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब लक्ष्मी से क्या मिलता है, कोई लक्ष्मी से कुछ मिलेगा थोड़ी, देने वाला तो बाबा है ना, अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी तो है ही स्वर्ग की देवी, उसे पैसे की भीख मांगते हैं और अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, लक्ष्मी से धन मांगते और अम्बा से क्या करते मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा करते। तो बाबा कहते हैं अम्बा तो अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते, अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है, श्री मत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती। अब अम्बा जो करती वो कैसे करती है वो भी सिखाती है, बाबा की श्री मत का पालन करो, जैसे मम्मा है, मम्मा खुद भी श्रीमत का पालन करती थी, सब बच्चों को बताती थी श्रीमत का पालन करो, तो अम्बा श्रीमत के द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है धारणा के लिए मुख्य सार, पहला इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भाव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भाव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। प्रकृति भी कोई कम पेपर नहीं लेती है, तो बाबा कहते प्रकृति या माया के द्वारा कोई भी पेपर आए जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। फेल होने का कारण क्या है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये जो बात किया तो बाबा कहते फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह। हर समय हर सीन को देख करके वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अवृत इशारे जो टाइटल चल रहा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके लिए क्या करना है, महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। दादियों को देखा लास्ट तक कैसे उनका चला, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज है। तो बाबा कहते महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर से किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। स्व चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
आंगन में किसी घड़ी मिली,
कहाँ पर,
आंगन में,
ये एक घड़ी मिली है आंगन में, जिस किसी के हो। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी चीजों की भी संभाल रखो, शरीर का भी संभाल रखो, अपने चीजों का भी संभाल रखो। अगर संभाल नहीं रखते तो योग का बैलेंस नहीं होता है। इसलिए हर चीज में बैलेंस रखना है, तन का, मन का, और जो संगम युग के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ा बैलेंस रखना है, बाबा जो बच्चों को वरदान देते हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। जिस किसी की हो, अभी स्टेज के पीछे ले ले, नहीं तो रिसेप्शन से लेंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बैठे रहेंगे। ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक। टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। ऑल द डबल फॉरेन